समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और ये जो पीछे आप सुन रहे हैं ना, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, बारिश, ये सब आज सुबह से दिल्ली का एक हिस्सा बने हुए हैं। तेज बारिश हो रही है, चारों तरफ हल्का हल्का पानी भरा हुआ है, गड़गड़ाहट की आवाज़ें हैं और ये आवाज़ हमारे स्टूडियो तक भी पहुँच चुकी है। और हम किस तरह से इसका सामना करते हुए आए हैं ये धीरे 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 आपको पता चलेगा जब हम अपने इस आज सवेरे में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल, ठीक मेरे सामने इस समय अनीता बैठी हुई हैं और अनीता इशारा कर रही हैं कि रवीन, आज इतनी तेज़ बारिश थी और मैं कैसे पहुंची हूँ, एंड आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद माय लिसनर्स, है ना?
ओह यस, इट वाज अ मेजर हेल स्टॉर्म एंड वी एक्चुअली कॉल, यू नो, वी ब्रेव द स्टॉर्म टू कम टू द ऑफिस एंड रीड द न्यूज फॉर आवर लिसनर्स, एंड इंटरेस्टिंग बट अ वेरी फ्राइटनिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो।
लेकिन इस आंधी ने, इस बारिश ने दिल्ली के लोगों को थोड़ी तो राहत दी होगी। 3-4 दिन से टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा था और आज अगले 2 या 3 दिन तक तापमान में हल्की सी गिरावट आएगी आपको, और यूं कहें कि दिल्ली की पहली बारिश ने आज आपका सुबह सुबह स्वागत किया है। बारिश है, आंधी है, अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड ने आगाह किया है कि आंधी और तेज बारिश के कारण कुछ उड़ानों पर भी इसका असर पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं तो पहले अपने SMS या WhatsApp चेक कर लीजिए कि आपकी उड़ान सही समय पर है या नहीं। और ये गड़गड़ाहट और ये तेज बारिश आज दिन भर आपका स्वागत करेगी और कहीं कहीं पर थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, लेकिन कहीं कहीं बहुत आनंद भी आएगा। चलिए, आज सवेरे के सफर को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज क्या कुछ रहेगा इस पूरे दिन भर।
सो गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल लिसनर्स ऑन आकाशवाणी FM गोल्ड एंड 100.1 एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अवर प्रोग्राम, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आज सवेरे, वेयर एन वी गिव यू द नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 2nd of May। वी बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले अर्ध स्वचालित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण करेंगे। विझिंजम बंदरगाह के पहले चरण का निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा हो गया था। बंदरगाह रेल केरल के महत्वपूर्ण परियोजना है और लगभग 3 दशकों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और संपर्क सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 1 रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे।
India is set to host the Global Media Dialogue for the first time as part of WAVES Summit at Jio World Convention Center in Mumbai today.
WAVES World Audiovisual and Entertainment Summit. WAVES. Connecting creators, connecting countries. WAVES.
The event marks a significant milestone in the country's engagement with the global media and entertainment landscape. The 4-day summit, which began yesterday, was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The Global Media Dialogue is being organized by the Ministry of Information and Broadcasting, with support from Ministry of External Affairs. Over 60 countries are expected to participate in the event, with delegations from across Asia, Europe, Africa and the Americas. The dialogue aims to encourage international collaboration, promote best practices and explore avenues for policy alignment, talent exchange and capacity building in the global media space. And now we go over live to our correspondent Adarsh covering the Waves Summit. Hello, Adarsh. What will be the focus area? Okay, we're having some technical glitch here, so we'll connect with our correspondent again. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the record GST collection in April showcases the resilience of Indian economy and effectiveness of cooperative federalism. Gross GST collections for April stood at 2.36 lakh crore rupees, marking a 12.6% increase over the gross collection of 2.1 lakh crore rupees in April 2024. Net GST collections for April 2025 reached 2.09 lakh crore rupees, reflecting a 9.1% growth compared to the net collection of 1.92 lakh crore rupees in April 2024. In a social media post, Ms. Sitharaman expressed deepest gratitude to the taxpayers whose contributions and faith in the GST architecture drive the nation's progress. She said their contributions reflect a shared commitment to building a Viksit Bharat. Ms. Sitharaman also highlighted the dedicated efforts of finance ministers of all states and state GST authorities who remain equal partners in India's GST framework. The finance minister also acknowledged the efforts of the field formations of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, for their sincere efforts. The increase in GST collections was driven by a higher level of economic activity and better compliance. And now we have gotten connected with Adarsh. Hello, Adarsh.
Hello.
Yeah. So what will be the focus area during the global media dialogue?
Talking about the focus area, there will be a lot of discussion in bringing global dialogue at one place. Mm-hmm. During the global media dialogue, ministerial representatives from 25 countries will participate and focus on several topics. This includes promoting open and fair trade practices in the media and entertainment sector, exploring ethical use of AI, mm-hmm. commitment to prevent misinformation, maintaining media integrity, and promoting responsible journalism. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav will chair the dialogue. And the Information and Broadcasting Minister will hold bilateral meetings as well with senior ministers from 10 countries, including the UK, Russia, Egypt, Bhutan, Bahrain, and Indonesia. There will also be this will also be followed by the release of the Waves Declaration, which will lay down a framework for sustainable development, inclusiveness, and global cooperation in media and entertainment.
Okay, so can you tell us what will be the major highlights during the second day of the summit then?
Apart from the global media dialogue, mm-hmm. the Create in India Challenge Awards will be felicitated to the finalists of 32 challenges spanning animation, gaming, esports, comics, filmmaking, advertising, social media, and more. Panel discussions are scheduled on diverse topics as well. Many eminent personalities will also grace the event. These include Geostar Chairman Nita Ambani, NVIDIA Vice President Richard Karras, Head of Instagram Adam Mosseri, E-Series MD Bhushan Kumar, actors Aamir Khan, Nagarjuna, mm-hmm. PVR founder Ajay Bijli, actresses Aishwarya Rai Bachchan, Kareena Kapoor Khan, and filmmaker Karan Johar. And meanwhile, apart from these, in terms of cultural performances, renowned musicians Shan, Shankar Mahadevan, Papon, and more, along with Egyptian, along with international cultural performances from Egypt and Sri Lanka.
Okay, thank you so much, Adarsh, for these updates. Thank you.
वेव्स की दुनिया के बाद आइए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं. और अनीता जानती है आज का दिन बहुत खास है क्योंकि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली भी सेना के बैंड की मधुर धुनों और भक्ति के जयकारों के साथ धाम पहुंच चुकी है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र मंदिर में पहुंच चुके हैं। अनिता, एक बात बताओ, तुम्हें घड़ियों का कितना शौक है?
बहुत, I love wearing watches, though not digital, analog ones, but I love watches.
एक बड़ा लंबा सफर रहा है ना, डिजिटल, एनालॉग और आजकल स्मार्ट वॉच का। बस इसी के चलते भारतीय रेलवे ने एक प्रतियोगिता शुरू की है और वो है डिजिटल घड़ी के डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा। और इस प्रतियोगिता से तैयार जितनी भी घड़ियां हैं उनको देश भर के रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। अगर आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाले हो सकते हैं। रेलवे के सूचना और प्रचार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में जिसको भी पहला स्थान मिलेगा उसे 5,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त 3 वर्गों में 50,000 रुपये के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे और प्रतियोगिता इस महीने के अंत तक अपने डिजाइन जो है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो अगर आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, रेलवे की वेबसाइट पर जाइएगा, अपने डिजाइन तैयार कीजिएगा, वहां पे भेजिएगा और उम्मीद है कि अगर आप वाकई बहुत अच्छे डिजाइनर हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, अब रेलवे की पटरियों के बाद सीधा हम रुख करते हैं खेलों की ओर।
Yeah, moving on to the world of sports and IPL cricket, Mumbai Indians defeated Rajasthan Royals by 100 runs at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. We have a report from the sports desk.
Chasing a target of 218 runs set by Mumbai Indians, Rajasthan Royals were all out for 117 in just 16.1 overs. Mumbai managed to set a huge target with Ryan Rickleton's fabulous innings of 61 runs. He was also declared player of the match. Today, host Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad from 7:30 PM. Moving on to the Asian Under-15 and Under-17 Boxing Championships in Jordan, India finished its campaign winning a total of 43 medals including 15 gold, 6 silver and 22 bronze medals. The country finished second overall just behind Kazakhstan. BFI interim president Ajay Singh praised the team, calling their performance proud and satisfying. In badminton, India ended their Sudirman Cup campaign with a 3-2 win over England in their final Group D match in China yesterday. Despite the victory, India failed to reach the quarterfinals after earlier 1-4 losses to Denmark and Indonesia. With qualification hopes already over, India played freely as world number 44 Anupama Upadhyay comfortably beat England's Myung Ling Nang in women's singles. Satish Kumar, Karuna Karan, then edged past Harry Huang in a tough men's single match, while Tanisha Krasto and Shruti Mishra sealed the tie for India. With Mayur Jain, Chirag Jha, Sports Desk.
और अब देश के कुछ चुनिंदा शहरों की खबरों के लिए चलते हैं अनीता के पास। अनीता, क्या कुछ है?
The Greater Chennai Corporation has introduced a standard operating procedure mandating the builders to install dust barriers, cover waste materials and use water sprays to control dust. A resolution adopted at the council meeting said that violators would have to pay a hefty penalty ranging from 10,000 rupees to 5,00,000 rupees depending on the site's size and severity of violations. At least 6,150 metric tons of solid waste is generated every day in the city. The Assistant Commissioner of the Civic Body, Dr. V. Jayachandra Bhanu Reddy, said that a warning notice will be issued to rectify the violations and a 15-day period will be provided for compliance. If the violation continues, a penalty would be imposed based on the area. An additional 7-day period will be given after that, and if not rectified, even after that, an order will be issued to stop construction activities. Two inscriptions dating to the early 13th century discussing the taxes prevalent during the Pandya era have been found at Paramakudi in Ramnathpuram district. A group of independent archaeologists led by Ramnathpuram Archaeological Research Foundation President V. Rajaguru discovered the inscriptions at the Malakarjun Iswaran Shrine in the Shiva Temple in Ammanastavaram, Paramakudi. The two inscriptions were part of the same stone and according to Rajguru, they belong to the era of Pandya king Maravaramana Sundar Pandya I, who ruled Madurai in the early part of the 13th century. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has said that by handing over the appointment letters as permanent employees of the government to the Paur Karmikas, they have uplifted their life. Paur Karmikas or Municipal Corporation garbage collecting workers were given the appointment letters yesterday by Chief Minister Siddaramaiah. This was one of the promises made earlier during the assembly election by the Congress party. This will cost the exchequer an amount of 700 crore rupees. Speaking on the occasion, Shiv Kumar said that the Paur Karmikas are the ambassadors of cleanliness and children of God. He stressed on their vital role in keeping the city clean. He further said that by depositing an amount of 10 lakh rupees, the Paur Karmikas inducted into the government can get a pension of 6,000 rupees per month after retirement. The Telangana government has withdrawn the Sri Salem Left Bank Canal Tunnel Rescue Operation based on the report of Geological Survey of India, GSI. State Irrigation Minister Uttam Kumar Reddy informed this at Nagar Kurnool yesterday. He said the operation had been withdrawn following a report from the GSI which flagged the danger posed to rescuers in proceeding further at the actual site of the incident. The minister said all the expert teams drawn from various organizations, including the Indian Army, have been withdrawn and an expert team has been set up to suggest ways and means for the tunnel project. Total 8 individuals, including engineers and workers, are trapped under the debris when the SLBC tunnel partially collapsed deep inside the SLBC tunnel. During the 65 days long rescue operation held by multiple agencies, 2 bodies were recovered while 6 more remained untraced. The irrigation minister said the government had announced 25 lakh rupees ex gratia to the families of each victim. And South Central Railway STR has achieved its highest ever freight loading for last month by recording 12.36 million tons MTs in April this year. This marks a significant increase from the previous record of 11.64 MTs set in during the same period last year, showing over 6% growth. This growth was mainly due to a sharp rise in loading of iron ore and cement. However, fertilizer and container loading saw a small decline. SCR has focused on improving freight services by streamlining wagon supply and monitoring train movements. General Manager Arun Kumar Jain appreciated the team's coordination, especially during ongoing infrastructure work and special train operations. And now for Metro City news from Delhi, Mumbai and Kolkata. Over to Naveen.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने कल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतिम खंड पर नमो भारत ट्रेन की परीक्षण यात्रा आरंभ हुई, जो इस खंड के अंतिम स्टेशन मोदीपुरम तक पहुंचेगी। वहीं दिल्ली में यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार शहर में आज से 400 इलेक्ट्रिक दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर DEVI बसें उतारने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक स्वच्छ और स्मार्ट भविष्य की ओर बढ़ रही है। वहीं दिल्ली सरकार श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की वार्षिक स्तर पर निशुल्क जांच कराएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल श्रमिक दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिन में अत्यधिक गर्मी की स्थिति में श्रमिकों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आराम मिले और इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। और अब बात हीट वेव यानी लू की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भीषण गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए हीट स्ट्रोक यूनिट को शुरू किया है। हीट स्ट्रोक यूनिट इमर्शन कूलिंग तकनीक से सुसज्जित है, जो हीट स्ट्रोक के त्वरित प्रबंधन के लिए स्वर्ण मानक की तरह काम करती है। सुनते हैं हमारे संवाददाता सकलिन की रिपोर्ट।
गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत की गई है। इमर्शन कूलिंग तकनीक से युक्त इस यूनिट में 200 और 250 लीटर की क्षमता वाले 2 इमर्शन कूलिंग टब बनाए गए हैं। इसके अलावा एक उच्च क्षमता वाला बर्फ बनाने वाला रेफ्रिजरेटर भी इस यूनिट में है। मरीजों की गहन देखभाल के लिए वेंटिलेटर और उन्नत मल्टी पैरामीटर मॉनिटर से सुसज्जित 2 क्रिटिकल केयर बेड भी हीट स्ट्रोक यूनिट में बनाए गए हैं। अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि ये यूनिट इमर्शन कूलिंग तकनीक से सुसज्जित है, जो हीट स्ट्रोक के त्वरित प्रबंधन के लिए वर्तमान में स्वर्ण मानक है।
जो इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी है, यही लेटेस्ट टेक्निक है वर्ल्ड वाइड, जो सबसे इफेक्टिव मानी जाती है।
अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमलेंदु यादव ने बताया कि पिछले वर्ष भी हीट स्ट्रोक यूनिट चालू की गई थी और इस वर्ष भी यह यूनिट अत्याधुनिक आधुनिक सुविधाओं से लैस है।
हमारी 3 एम्बुलेंस इक्विप्ड है फॉर डीलिंग विद द हीट स्ट्रोक, और हमने एक आउटरीच सर्विस भी रखी है जिसमें हम फील्ड एरिया से ही उसका हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसको टाको मेथड ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो वो एक हमारी आउटरीच सर्विस है दिस ईयर।
अस्पताल से पहले की देखभाल की दिशा में एक कदम के रूप में अस्पताल ने एक मोबाइल हीट स्ट्रोक रिस्पॉन्स यूनिट भी शुरू की है।
उधर दिल्ली के INA इलाके में स्थित दिल्ली हाट में कल देर शाम भीषण आग लगने से लगभग 26 दुकानें जल गईं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी और अगर इसके पीछे कोई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज हम लिस्ट बना रहे हैं ऐसे सभी लोगों की जिनका नुकसान हुआ है, और हम लोग संकल्पित हैं 2 चीजों के लिए। एक तो जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ सरकार खड़ी है, दोबारा उनकी दुकानें लगें इसकी व्यवस्था करेंगे, और दूसरा आग के कारणों की जांच करके जो भी कोई दोषी होगा उसको सजा भी दिलाई जाए, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शहर में स्वच्छता के संबंध में राजनिवास में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले 20 दिन में दिल्ली के सभी हिस्सों में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।
अगले 20 दिन में हर स्तर पे दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा। हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए कि हर जगह स्वच्छता अभियान को बहुत ही मास स्केल पे चलाया जाए। हर एरिया में अपने जोन में हर DC की जिम्मेवारी होगी, हर DM की जिम्मेवारी होगी, और किसी भी प्रकार का फुटपाथ पे सड़क पे एंक्रोचमेंट यदि दिखता है, सेफ्टी में कहीं लैप्स होता है, तो DCP की जिम्मेदारी होगी।
और अब बात मुंबई की। महाणा कोंकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास मंडल की ओर से पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत विभिन्न आवास योजनाओं में नहीं बिके 13,395 फ्लैटों की बिक्री के लिए नई वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण का शुभारंभ हाल ही में महाड़ा के उपाध्यक्ष व CEO संजीव जायसवाल ने किया। विरार बोलिंज, खोनी, शिरढ़ोन, गोटेघर, भंडराली व कोंकड़ मंडल की आवास परियोजनाओं में बिना बिके फ्लैटों की बुक माई होम वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वेबसाइट है bookmyhome.mhada.gov.in। और अब रुख पश्चिम बंगाल का। कोलकाता में कल शाम भारी बारिश के साथ तेज तूफान आया। बिहाला इलाके में एक व्यक्ति की पेड़ की टहनी से गिरने से मौत हो गई। दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी की उड़ानें रद्द कर दी गई और कई जगहों से यातायात बाधित होने की खबर है। तो ये थी आपके शहर की खबरें। बात मौसम की तो उस पर आज सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली में लगातार बारिश जारी है आज सुबह से, और दिन भर लगभग यही माहौल बना रहेगा। तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। कोलकाता की बात करें तो आज दिन भर बारिश की संभावना है, तापमान न्यूनतम 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees and the maximum will be around 34 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius.
और अब बातें आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1902 में पहली साइंस फिक्शन रिलीज हुई थी। फ्रेंच निदेशक जॉर्ज मेलियस की बनाई इस फिल्म का नाम था अ ट्रिप टू मून।
टुडे इज द वर्ल्ड ट्यूना डे। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 2nd ऑफ मे एज वर्ल्ड ट्यूना डे टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल ट्यूना फिशिंग। Due to its amazing qualities, tuna became threatened by overwhelming demand and overfishing. In the year 1885, Good Housekeeping magazine made its debut and went on sale for the first time. It quickly became the gold standard for home tips and recipes for women.
1986 में वो आज ही का दिन था जब अमेरिका की एन बैनक्रॉफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी थी, और 1952 में दुनिया के पहले जेट विमान जी हैविलैंड ने लंदन के जोहानिसबर्ग के बीच पहली उड़ान भरी थी।
इन द ईयर 1918 जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन GM अक्वायर्ड शेवरले मोटर कंपनी, एंड इन द ईयर 2011 टेररिस्ट उसामा बिन लादेन द मास्टरमाइंड बिहाइंड द September 11, 2001 टेररिस्ट अटैक्स इन द US वाज किल्ड बाय US फोर्सेस during a raid on his compound hideout इन पाकिस्तान।
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नजर डाली जाती है 2 मई 1921 बात सत्यजीत रे की। दुनिया की सबसे महान फिल्मी हस्तियों में से एक, आज उनकी जन्म जयंती है।
जी, द इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, ऑथर, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलास्ट्रेटर, कैलीग्राफर एंड कंपोजर। रे इज वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म डायरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर वर्क्स इंक्लूडिंग द अपू ट्रिलॉजी, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी, चारुलता एंड द गोपी बागा ट्रिलॉजी।
सत्यजीत रे को पाथेर पंचाली के नाम से तो हर कोई जानता है, लेकिन हिंदी फिल्म में शतरंज के खिलाड़ी उनकी अमूल्य कृति है। एक डायलॉग और फिर उसके बाद उस फिल्म का एक गीत याद करेंगे सत्यजीत रे को।
कितना सुहाना समा है और हम हैं कि शतरंज से महरूम।
मेरे साहब, हर मुश्किल का हल मौजूद है।
ए सुभान अल्लाह हुजूर, मिर्ज़ा साहब आपकी अकल पे तो कभी कभी कुर्बान होने को जी चाहता है।
प्यादे तो ठीक है
जी,
तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
मैं तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख,
ठीक।
Ray received many major awards in his career, including a record 37 Indian National Film Awards, which includes Dada Saheb Phalke, a Golden Lion, a Golden Bear, 2 Silver Bears, many additional awards at the international film festivals and ceremonies, and also an Academy Honorary Award in 1992.
आज भारतीय राजनीतिज्ञ और शास्त्रीय साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री की भी जयंती है। वो भक्ति साहित्य के एक आधिकारिक विद्वान थे।
Today is also the birth anniversary of Vasant Rao Deshpande, the Hindustani classical vocalist renowned for contribution to Natya Sangeet or musical dramas. Vasant Rao Deshpande got trained under several gurus in various different schools of singing. He began his musical training under Maestro Shankar Rao Sapre of Gwalior, a disciple of V.D. Paluskar in Nagpur. Deshpande performed classical and semi-classical music, appearing in movies including Kalia Mardan, Dood Bhat and Asht Nayak. He issued several commercial releases under his name and created Raj Kalyan, a variant of Yaman without the Pancham.
आज जन्म जयंती है हेमचंद्र गोस्वामी की, आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि और इतिहासकार।
Today is also the birthday of Arnold George Dorsey or Engelbert Humperdinck, the British pop singer described by AI Music as one of the finest middle-of-the-road balladeers around. He achieved international prominence in 1967 with his recording of Release Me. Humperdinck started as a performer in late 1950s under the name Jerry Dorsey. A snippet of a song sung by him.
Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new.
Am I That Easy to Forget by Engelbert Humperdinck. Today is also the birthday of Dwayne Douglas Johnson, the ring name being The Rock, American actor, professional wrestler. He signed to WWE, where he performs as part-time basis, widely regarded as one of the greatest professional wrestlers of all time. Johnson was integral to the development and success of the World Wrestling Federation during the Attitude Era.
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये संस्करण आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। दिल्ली की बारिश के साथ मैं यानी नवीन सक्सेना और अनीता आपको छोड़े जा रहे हैं इस बेहतरीन गीत के साथ, जिसे आज आप दिन भर गुनगुनाएंगे।
ये सपने निगाहों में, चला हूं तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में, चला हूं तेरी राहों में, जिंदगी
tune for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.